नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने फोन किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि टेलीफोन पर हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध प्रगाढ़ बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति सिल्वा ने परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने अपनी ब्राजील यात्रा को स्मरण किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र के हितों से समझौता करने के किसी भी दबाव के आगे कभी नहीं झुकेगा। नई दिल्ली में M.S. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार का मानना है कि राष्ट्र की प्रगति का आधार किसानों की शक्ति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुग्ध, दाल और जूट के उत्पादन में विश्व में नंबर एक है। श्री मोदी ने लोगों से आत्मनिर्भर भारत आंदोलन को मजबूत करने को कहा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का आंदोलन का नेतृत्व किया।
डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया। वो खेती में केमिकल के बढ़ते प्रयोग और मोनोकल्चर फार्मिंग के खतरों से किसानों को लगातार जागरूक करते रहे। यानी एक तरफ वो ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और साथ ही उन्हें धरती माँ की भी चिंता थी। दोनों के बीच संतुलन साधने और चुनौतियों का समाधान करने के लिए उन्होंने एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट दिया। उन्होंने बायो विलेज का कंसेप्ट दिया जिसके जरिए गांव के लोगों और किसानों का सशक्तिकरण हो सकता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल मॉस्को क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इससे पहले श्री डोभाल ने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सरगेई शोइगु के साथ बैठक की। श्री डोभाल ने कहा कि भारत का रूस के साथ विशेष और दीर्घकालिक संबंध है और वह इसे काफी महत्व देता है। श्री डोभाल ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत हुई। उन्होंने ये भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति श्री पुतिन जल्द ही भारत आएंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का अंतिम जत्था सिक्किम में गंगटोक पहुंच गया है। नाथुला दर्रे से इस वर्ष कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के 10वें और अंतिम जत्थे में अधिकारियों सहित 50 व्यक्ति शामिल हैं। उन्हें आज भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों द्वारा सुरक्षा और मार्ग संबंधी जानकारी दी जाएगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने से पहले यह दल सेराथांग और 17th माइल में 4 दिन रुकेगा, जिससे जलवायु अनुकूल ढलने में उन्हें मदद मिलेगी। 11 से 12 दिनों में उनकी यात्रा पूरी होगी। इस वर्ष 5 वर्ष के अंतराल के बाद सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की गई है। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना कल जारी कर दी। नामांकन 21 अगस्त तक दाखिल किए जा सकते हैं और मतदान 9 सितंबर को होगा। इस बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा को गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन के लिए अधिकृत किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि NDA संसदीय दल के नेताओं की बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने कल भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी शेवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी। इस पहल से राज्य के मेधावी छात्र ब्रिटेन में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। शेवनिंग ब्रिटेन की सरकार का अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।